नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 54वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री इस अवसर पर डॉ आनंद स्वरूप गुप्ता स्मारक व्याख्यान भी देंगे। इस वर्ष के व्याख्यान का विषय है नए आपराधिक कानून, नागरिक केंद्रित सुधार। श्री शाह 2023 और 24 के लिए विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक विजेताओं को सम्मानित भी करेंगे। समारोह के दौरान गृहमंत्री नए आपराधिक कानूनों के बारे में ब्यूरो की पत्रिका इंडियन पुलिस जर्नल के विशेषांक का विमोचन भी करेंगे। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो पुलिस व्यवस्था में उत्कृष्टता लाने के लिए प्रमुख वैचारिक संगठन के रूप में काम करता है। इस संस्थान का प्रमुख लक्ष्य पुलिस के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं विकसित करना है। इसके अलावा ब्यूरो नागरिकों के लिए बेहतर सेवा वितरण में सहायक प्रौद्योगिकी की खोज करने, पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कल पंचकूला में 10 साल बेमिसाल पुस्तिका का विमोचन कर अपने कार्यकाल का ब्यौरा रखा। उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 10 वर्षों में पंचकूला में 100 बड़ी परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हुई हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलों का निर्माण व सड़कों का जाल बिछाकर लोगों को दशकों पुरानी मांग पूरी की है। उन्होंने बताया कि इन 10 वर्षों में पंचकूला में करीब 5,000 करोड़ रूपये के विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा जनता के सम्मुख रखना चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा देते हुए कहा कि 1150 करोड़ से नेशनल हाईवे 73 बना है और राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 1162 करोड़ से नई सड़कें बनी हैं। इसके अलावा करीब 99 करोड़ की लागत से सड़कों की रिकार्पेटिंग की गई। ग्रामीण क्षेत्र 38 करोड़ रूपये की लागत से 9 पुल बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि खटौली व अन्य गांववासियों को तीन मुख्यमंत्रियों के आश्वासन के बाद भी टांगरी नदी पर पुल पिछले 50 साल में नहीं बना था। अब लगभग 18 करोड़ की लागत से गांववासियों की मांग को पूरा किया गया है। इस दौरान उन्होंने गांव में हुए प्रत्येक विकास कार्य का ब्यौरा आंकड़ों के साथ दिया। केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल देर शाम को करनाल पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में जाकर माथा टेका। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के प्रत्याशियों की पहली सूची 28 या 29 अगस्त को आ सकती है। हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी। मनोहर लाल से जब विपक्ष के नेता दुष्यंत चौटाला को हुड्डा के साथ तालमेल न बैठाने की सलाह देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने लोकतंत्र के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि राजनीति में कौन किसकी रणनीति को प्रभावित करेगा यह तय करना मुश्किल है। केंद्र द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई यूपीएस पेंशन योजना को लाभकारी बताते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू होने से कर्मचारियों के पेंशन में सुधार देखने को मिलेगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं से मानवता, प्रेम, नारी सम्मान, समरसता और शांति की दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कल कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर फरीदाबाद के माता अमृता आनंदमयी हॉस्पिटल और सेक्टर 31 स्थित श्री कृष्ण नवग्रह मंदिर में आयोजित जन्माष्टमी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। फरीदाबाद में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुगम कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्य रूपरेखा की व्याख्या सहज सतत व समग्र दृष्टि विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी में देश के प्रमुख 400 के करीब शिक्षाविद और विद्वान हिस्सा लेंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्व और इसके प्रभावों पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। आज महानिदेशक दूरदर्शन न्यूज प्रिया कुमार कार्यक्रम में विशेष अतिथि होंगी। शिक्षाविद ऋषिपाल चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।